लिखूं भला मैं कैसे तेरी शान फातिमा।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज्सा अहलिल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। आलमी योम ख़वातीन बमनासबत विलादत बसादत शहज़ादी कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मौके पर एक मरतबा फिर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हैं। कल का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा फ़रमाया, जिसमें बीबी के सीरत व किरदार पर रोशनी डाली गई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ख़वातीन ने शिरकत की। इसी सिलसिले का आज दूसरा और आखिरी प्रोग्राम आपकी ख़िदमत में पेश कर रहे हैं। आज हमारी खुशकस्मती है कि हमारे साथ इंडिया से और पाकिस्तान से और ऑस्ट्रेलिया से ख़वातीन मौजूद हैं, जो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत व किरदार पर रोशनी डालेंगी और हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हाल रहेंगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिता ज़हरा सैदी, यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं माशाल्लाह, डाओ यूनिवर्सिटी से डेंटिस्ट्री की है, उसके बाद कराची से ऑस्ट्रेलिया मूव हो गई। ऑस्ट्रेलिया में पॉजिटिव पेरेंटिंग के सेशंस कंडक्ट करती रहती हैं, एज उसके अलावा मेंटल हेल्थ एज मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर, फर्स्ट एड प्रोवाइडर भी कम्युनिटी को सर्व कर रही हैं। तो बीबी की जहाँ पर हम बात करते हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से आजकल की नस्ल के लिए सबक आमोस उनकी सीरत व किरदार सबक आमोस पहलू, तो हम गुफ्तगु करेंगे। रिदा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
और खुश आमदीद कि हमारे इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। रिदा, क्योंकि आप खुद यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, खुद माशाल्लाह जवान हैं, इस दौर में आपने पढ़ा भी है और फिर आप काम भी कर रही हैं, पेरेंटिंग पे भी काम, पॉजिटिव पेरेंटिंग पे भी काम कर रही हैं, तो एक तो यूथ के लिए जो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं कि आज की दुनिया कहीं और है, और हम बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस सीरत व किरदार को किस तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकें, किस तरह उनको रोल मॉडल बना सकें, तो यूथ के चैलेंजेस और फिर उनको बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह से अलैहा की सीरत व किरदार से कनेक्ट किस तरह किया जा सकता है।
आज के दौर में दो तरफा सारा अमल है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि अगर हमें अपने बच्चों से, आज के यूथ से कुछ चाहिए तो हमें वर्किंग खुद भी करनी पड़ेगी और फिर इन रिटर्न उनसे हम कोई चीज़ मांग सकते हैं। उसके लिए हमें पहले अपना रोल मॉडल ऐसा बनाना है कि जो वाकई बीबी के अकॉर्डिंग, जो उनकी टीचिंग्स है उसके अकॉर्डिंग हो। उसके बाद हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी उसी लाए अमल को इख्तियार करें। आजकल बहुत कॉमन है रोल मॉडल का होना, और हमारे पास ये अच्छी चीज़ है कि अगर हम उन्हें प्रॉपर तरीके से बीबी फातिमा की बताई हुई जिंदगी को उनके सामने पेश करें तो वो भी शायद उसके लिए काम करना चाहें। सबसे पहली बात कि जो बच्चे बोलते हैं कि नहीं, वो जमाना और था, बीबी मासूमा है, गुनाहों से पाक है, उनके लिए आसान था चैलेंज को फेस करना, आज के दौर में जबकि वेस्टर्न कंट्रीज है बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरा उनको बताना हमेशा से यही रहा है कि बीबी, क्योंकि रहती दुनिया तक ये वो हस्तियां हैं कि जो नमूना अमल है, चाहे मैं कहूँ कि 10 साल पहले कोई मसला हो या 10 साल के बाद मसला हो, ये हस्तियां हमेशा हमें राह अमल दिखाती आई हैं। तो बीबी फातिमा सिर्फ घर के अंदर नहीं रही हैं, घर के बाहर भी गई थी। हमारे सामने जो है वो मुबाहला का वाकया, फिर बीबी फदक के लिए दरबार के अंदर गई हैं, अपने आप को पेश किया है सबके सामने, अपनी बात को लोगों के सामने पेश किया है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई है, लेकिन अपनी हुदूद में रह के। आज के दौर में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर मेरी अपनी 9 साल की बेटी है, जब कोई बात आती है कि हमें बाहर निकल के जाना है तो किस तरह से हम जो है लोगों के सामने जाएं, ये मसला हो जाता है, जॉब्स नहीं मिलती अगर हम प्रॉपर हिजाब के साथ जाएं। तो देखिए, हमेशा मैं ये कहूंगी कि आप हर चीज कर सकते हैं, घर में बैठ के भी और घर से बाहर जाकर भी। आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं जिन्हें समझते हुए आप घर से बाहर भी निकल सकती हैं। उसके लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि आपने उनकी टीचिंग्स को फॉलो करना है। मैं घर से बाहर निकल कर अगर जरिया माश के लिए जा रही हूँ तो मेरी सबसे अव्वल जिम्मेदारी मेरी औलाद, उनकी तरबियत है। सम टाइम हम काम करने जाती हैं औरतें, तो उसके बाद घर आके वो हिम्मत नहीं रहती। तो कहना यही है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए उनकी टीचिंग्स पढ़ना भी जरूरी है कि उन्होंने हमें सिखाया क्या है। और मैं कह रही हूँ कि माँ बाप का जो रोल मॉडल है वो यही है, कि माँ बाप अपने बच्चे को डांट डपट करके, खास करके आज के दौर में नहीं समझा सकते, खुद उनके लिए ऐसा रोल मॉडल बन जाएं कि बच्चे, बीबी फातिमा अपनी औलादों को समझाया सिखाया। बीबी फातिमा की उम्र 18 साल के, आप शहीद हो गई, शहादत, रहलत पाली। तो मैं कहूंगी इतनी छोटी उम्र के अंदर उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा सिखा दिया, यानी 18 साल में बताएं बच्चों की कितनी तरबियत की, कैसी तालीम की, कि बीबी जैनब शबे आशूर के बाद जितने मामलात हुए, किस तरह बीबी ने नमाज को तर्क नहीं किया। उस वक्त बीबी फातिमा मौजूद नहीं थी, वो उनकी टीचिंग्स थी, कि जो इतने टाइम बाद भी वो दिखा रही है दुनिया को, ये जुल्म के होने के बावजूद, तकालीफ होने के बावजूद उनकी टीचिंग्स काम आ रही हैं, और 18 साल की बीबी की तरबियत थी। हम और आप के माशाल्लाह जिंदगी है, हमारे पास और दूसरे काम होते हैं, लेकिन हमारी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। हमें पहले, हमारा काम घर से शुरू होता है, जो बीबी ने हमें सिखाया कि उस चार दीवारी से, बीबी ने मना नहीं किया चार दीवारी के बाहर जाना, वो काम हमारे घर से शुरू होता है। अगर मैं किसी की बेटी हूँ, मेरे हुकूक मेरे वालदैन के लिए क्या है, मेरे हुकूक मेरे बहन भाइयों के लिए क्या है, मेरे हुकूक पड़ोसियों के लिए क्या है, शादी हो जाती है मामला दूसरे हो जाते हैं, मेरे हुकूक मेरे शोहर के लिए क्या है, मेरे हुकूक मेरे बच्चों के लिए क्या है, उसके लिए पहले मैं जवाब दूँ, जवाब दे हूँ खुदा को। तो जब मैं ये सोच के करूंगी, मैंने बाकी जिम्मेदारियां भी निभानी है, लेकिन मैं पहले घर से शुरू करूंगी, और उसके लिए रोल मॉडल मैं खुद बनूंगी अगर मैंने अपनी औलाद की तरबियत भी करनी है।
माशाल्लाह हम देखते हैं कि वाकई कुछ पहलू हैं कि हमें सबसे पहले खुद रोल मॉडल बन के दिखाना है। आपने बीबी फातिमा जैना सलामुल्लाह अलैहा घर में रहते हुए बाहर भी गई और उन्होंने हक के लिए आवाज उठाई, जहां जहां दीन को जरूरत हुई आपने अंजाम दिया। तो क्योंकि आप वेस्ट ऐसी जगह रह रही हैं जहाँ पे सर्वाइव करना रियली एक मुसलमान खवातीन के लिए खासतौर पर मुश्किल काम है, तो क्या आप ये समझती हैं कि अगर वाकयन हम बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के रास्ते पर चलेंगे, उनकी सीरत को अमल करेंगे, तो क्या हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी या मुश्किल तरीन होती चली जाएंगी?
देखिए, सबसे
और
बड़ी
आपका अपने
बात,
एक्सपीरियंस के
इस्लाम इस्लाम का रास्ता जो है, जैसे मौला अली का कौल है कि जब तुम्हें लगे तुम्हारी जिंदगी पुरसुकून जा रही है, तो रुक के जरा देख लो इधर उधर कि तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया, क्योंकि हक का रास्ता जो है वो तकलीफों से भरा हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगी बहुत सारी तकलीफें, लेकिन आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है। क्योंकि हम, जैसे मेरी बेटी आके बोलती है, बताती है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो अपनी जिंदगी बहुत आसानी से गुजार रहे हैं, कोई रूल्स और कोई रेगुलेशंस नहीं है, और लेकिन चूंकि हम खुदा को मानते हैं तो हमें इतनी तकलीफ क्यों है। तो बात वहीं आके खत्म हो जाती है कि अगर ये जिंदगी टेम्पररी है, इसके बाद मरना है वो लॉन्ग लास्टिंग है, तो अगर उस आखिरत के अंदर कुछ पाना है तो यहाँ हमें तकलीफें उठानी पड़ेंगी। तो बीबी फातिमा को अगर हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं, सबसे पहली चीज अगर मैं अपनी पर्सनैलिटी के अंदर डेवेलप करूंगी, वो है दरगुजर, पेशेंस। आज के दौर में वो खत्म है, इसको मैं दीन के लिहाज से नहीं कह रही, नॉर्मल लाइफ को गुजारने के लिए, अगर एक नॉन मुस्लिम है उसे भी अपनी लाइफ गुजारनी है, अच्छी गुजारनी है, पेशेंस। तो अगर मुझे अपने बच्चों की एक करेक्टरिस्टिक बनानी है, उनका किरदार बिल्ड करना है, तो घर में शुरुआत वालदेन से होगी, वो पेशेंस, वो बर्दाश्त, फिर वो बच्चों में मुंतकिल होगी। कल को आप नहीं भी रहते तो उस बच्चे में भी पेशेंस। पेशेंस क्या है? मुझे आज जॉब नहीं मिली पर्दे की वजह से, घर आई परेशान, चूंकि मुझे पता है कि मैं दीने हक पर हूं, मैं बीबी फातिमा के पाथ को फॉलो कर रही हूँ, तो मुझे वो घबराहट नहीं होगी, मेरे अंदर वो पेशेंस होगा, मेरे अंदर वो बर्दाश्त होगा, और खुदा आपकी मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो अगर 3 दफा आपकी वो जो CV है रिजेक्ट कर दी गई है, या इंटरव्यू आपका नाकाम हुआ है उस पर्दे की वजह से, लेकिन चूंकि आप हक पर हैं तो आप खुदा पे यकीन रखिए, आगे इंशाल्लाह आपको जरूर उसका फल मिलेगा, बेहतरीन जॉब मिलेगी। लेकिन आपको उसके चैलेंजेस अगर आपको फेस करने हैं, तो आपने अपना दिल मजबूत कर लेना है कि अगर आप बीबी फातिमा के बताए हुए अमल पर चल रही हैं, तो देखिए उस पर आपको फल जरूर मिलेगा और आखिरत आपके हाथ के अंदर है, लेकिन चैलेंज फेस करने हैं। ये रास्ता कोई सुकून से और आसाइशों से भरा नहीं है।
जकल्ला खैर कि अगर हम बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, तो फिर उनकी लाइफ से ही हमें समझ में आता है कि चैलेंज कितने चैलेंजेस उन्होंने फेस किए दीन को हम तक पहुंचाने में। विलायत का मुहासबा किस तरह किया, रसूल अल्लाह की जिंदगी में मुबाइला में घर से बाहर निकल के जाना, और फिर घर के अंदर किस तरह तब लोगों की खवातीन को जमा करके तबलीग करना दीन की। रियली के अगर आप दीन पर चलें तो मुश्किलात तो आती हैं, लेकिन बहरहाल खुदावंद आलम आपके साथ है और जरूर कामयाबी आपके कदम चूमे की। जज़ाकअल्लाह रिदा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, और खुदा से दुआ है कि खुदा आपको, आपके अहले खाना को, वालदैन को, बच्चों को सबको न सिर्फ इस दुनिया की बल्कि दीन की भी और आखिरत की तमाम कामयाबियां नसीब फरमाए और इमाम जमाना के लश्कर में शामिल
यामी
होने की तौफीक नायत फरमाए। जैसा
यामी, आपका भी बहुत शुक्रिया ख्वाह बिनत जहरा।
इस वक्त हमारे पास इंडिया से मौजूद हैं ख्वाहर अमरीन फातमा, जो कि माशाल्लाह माशाल्लाह अपने शोबे में अपने काम में दरसो तदरीस से मंसूब हैं, मुंसलिक हैं। आपने इब्तदाई तालीम जामतुल जहरा कुम से लखनऊ से 5 साल हासिल की, उसके बाद आप मजीद तहसील इल्म के लिए कुम तशरीफ ले गए। कुम में रिश्ता इखलाक में जामतुल जहरा कुम से तकमीली किया और अब वापस आके इंडिया के शहर मुंबई में बिलखसूस और बिलउमूम इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में अपनी दरसो तदरीस के फराइज सर अंजाम दे रही हैं। मदरसे के प्रिंसिपल भी हैं और जाकरी के जरिए और दरसो तदरीस के जरिए आप बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत को और उनके अंदाजो फिक्र को लोगों में आम करने की कोशिश कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम खबर, आपको
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मुबारकबाद बीबी की विलादत के हवाले से, इसके साथ साथ के ये बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हम अपने कीमती वक्त में से हमको वक्त दिया कि आप आए और हमारे सामीन को अपने इल्म से मुनव्वर फरमाएं। और
आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दावत दी और बुलाया।
इब्तिदा करते हैं, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम इन सब चीजों को देखते हैं तो बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत से आज के दौर में हम किस तरह इस्तफादा हासिल कर सकते हैं? आपकी फजीलत और क्या है जो रसूल अल्लाह ने या इम्मा ने बयान की कि हम वाकई उन चीजों को देख के समझ सकते हैं कि एक बेहतरीन रोल मॉडल अगर कोई हो सकती है खवातीन के लिए, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी तमाम जहानों की औरतों की सरदार है। तो जरा आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। तो
अजीज सामीन, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुम
सबसे
अस्सलाम,
पहले ये जो जश्न का इंतजाम किया गया है बमुनासिबत जनाब फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा के, आप सभी की खिदमत में, खुसूसन आप खानम बिनते जहरा और अपने वक्त के इमाम की खिदमत में तबरीक व तहनियत पेश करते हैं। जनाब फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा की अगर असमत को समझना है तो रिसालत माँ का यही एक जुमला हमारे लिए काफी हो जाएगा के रिसालत माँ ने इरशाद फरमाया, फातिमा तो बजा तो मिन्नी मनाजा फकत आजानी, यानी फातिमा जो है मेरा टुकड़ा है और जिसने यानी फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी और जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। तो अगर हम शहजादी कौनैन की जिंदगी का मुतालिया करें, देखें कि जैसे अभी खानम बिनत जहरा ने बताया कि हर बेटी यानी जब भी इस दुनिया में आती है तो उसके तीन पहलू होते हैं, एक बहसियत पहले बेटी के, फिर बहसियत जोजा के, फिर बहसियत मादर के। तो इन तीनों पहलुओं के बारे में अगर हम देखें जनाबे फातिमा को, तो जो कि फखरे मरियम है, अब इसके बारे में जैसे भी आपके सामने बयान किया गया था, तो जब यानी इम्मे मासूमिन से पूछा गया कि आपकी जद्दे माजिदा जनाबे फातिमा अफजल है या जनाबे मरियम, तो उस वक्त उन्होंने यही जवाब दिया था कि हमारी जद्दे माजिदा जन्नत की तमाम खवातीन की से अफजल हैं, बढ़कर हैं और उनकी सरदार हैं। तो जब जन्नत की तमाम खवातीन की सरदार हैं तो उस जन्नत में रहने वाली तो जनाबे मरियम भी हैं, तो मतलब जनाबे मरियम से भी अफजल हमारी जद्दे माजदा जनाबे फातिमतु जहरा सलामुल्लाह अलैहा है। और खुश आजादी की अगर जिंदगी का हम मुतालिया करें, कहते हैं मर्द हजरात के लिए तो 1,24,000 अंबिया का सिलसिला खुदा ने रवाना किया, लेकिन हमारे लिए शहजादी कौनैन है। लेकिन इनकी जिंदगी अगर देखें तो उन्होंने सिर्फ हमारे दरमियान 18 साल जिंदगी गुजारी है। तो ये 18 साल सिर्फ जो कि हमारे लिए 18 साल हम सब गुजार चुके हैं, कहते हैं ये 18 साल जिंदगी शहजादी ने किस एतबार से गुजारी, किस अंदाज से गुजारी कि यहाँ तक कि रिसालत माब ने कह दिया कि जिसने इन्हें अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। बल्कि खुलासतन यूं कह दें कि खुदा ने अपनी रजा को फातिमा की रजा में पिन्हा किया है और खुद अपनी नाराजगी को शहजादी की नाराजगी में पिन्हा किया है। तो आखिर 18 साल जिंदगी में शहजादी ने कौन से ऐसे आमाल अंजाम दिए कि जिसकी वजह से खुदा ने इनकी रजा को अपनी रजा, इनकी नाराजगी को अपनी नाराजगी करार दिया है। तो अगर देखा जाए तो शहजादी ने जो भी कुछ अंजाम दिया बहसियत बेटी के, जोजा के और माँ के, तो इसलिए नहीं आपने किया कि
रसूल जो है मेरे बाबा हैं, इस वजह से मैं उनकी खिदमत कर रही हूँ, वो तो थे ही, लेकिन क्योंकि दीनी उमूर में खुद रिसालत माम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन है कि फातिमा मेरे तमाम दीनी उमूर में मेरी मददगार थी। और किस अंदाज से थी कि खुद रिसालत माम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं जब मैं जंग से वापस आता था तो फातिमा रहती थी कि जो कि मेरे हाथों से तलवार लेकर, जो कि खून आलू तलवार रहती थी, उसे अपने हाथों से साफ किया करती थी। और यहाँ तक कि रसूल ने कह दिया कि फातिमा उम्मे अबीहा है, यानी अपने बाप की माँ है, तो माँ क्यों क्यों कहा इन्हें कि फातिमा मेरी माँ है, क्योंकि माँ अपने बच्चे को हर सर्दो गर्म से बचाती है। इसी तरीके से फातिमा ने हर तकलीफ में हर दर्द में मेरा साथ दिया। तो इस तरीके से जनाबे फातिमा ने बेटी के दर्जे को यानी कमाल की मंजिल तक पहुंचाया। और जब यानी शादी करके, जब इज्दिवाज होकर अकद करके खुद मौलाए कायनात के घर आई हैं, तो जब रसूल ने मौलाए कायनात से पूछा कि अली तुमने फातिमा को कैसा पाया, तो उस वक्त मौलाए कायनात ने क्या जवाब दिया। मौलाए कायनात जवाब देते हैं और इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि फातिमा मेरे तमाम दीनी उमूर में मेरी मददगार है, मेरी इबादतों में मेरी मददगार है।
वो
यानी
वाली
इस एक
जिनकी जिनकी 1,000 तकबीरों की आवाज अहले मोहल्ला एक रात में सुना करते थे, वो अली फातिमा के साथ एक रात गुजारने के बाद कह रहे हैं कि मेरी इबादतों की बेहतरीन साथी रही
मेरी
उसका। अल्लाह
इबादतों में
क्या का
बेहतरीन जनाबे
मर्तबा होगा, क्या मैं किस
फातिमा
तरह
का।
इबादतों में शरीक हुई होंगी, बेशक सुभान।
और जनाबे फातिमा इसके इस एक जुमले से मौलाए कायनात के समझ में आता है कि इज्दिवाज अकद खुद हो जाना सिर्फ ये नहीं कि हम दुनिया में एक साथ जिंदगी गुजारे हैं, बल्कि हमारा असल हदफ क्या है कि हम अपने हमसर के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने अकद में जिसके हैं उसको भी अपने साथ बुलंदी और कमाल की मंजिल तक ले जाए, यानी आखिरत में भी वो हमारे साथ साथ रहे, दीनी उमूर में भी एक दूसरे के मददगार साबित हों, सिर्फ दुनिया ही तक हमारे साथ ना रहे। और इस अंदाज से आपने कहा कि आज शायद ही कोई शौहर हो पूरी दुनिया में जो कि ये कह सके है कि मेरी जोजा ने आज तक मुझे मुझसे किसी चीज की फरमाइश नहीं की। यहाँ तक कि जनाबे फातिमा जबकि अलील है, मरीज है, अपने बिस्तर पर आराम कर रही है, साहिबे फिराश हैं, मौलाए कायनात आए, आने के बाद उन्होंने कहा फातिमा आज तक आपने मुझसे कोई ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, आप मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ मांगे, क्या वजह है आपने आज तक मुझसे कोई ख्वाहिश नहीं की, इतने साल आपने मेरे साथ जिंदगी गुजारी। तो उस वक्त जनाबे फातिमा ने क्या इरशाद फरमाया था, यही कहा था कि अबल हसन जब मैं कि इस दिवाज में आई अपने बाबा के घर से, तो मेरे बाबा ने मुझसे कहा था फातिमा अली गरीब है, अली से किसी ऐसी चीज की फरमाइश ना करना कि वो पूरा ना कर सके और वो शर्मिंदा हो जाए। तो इस बात से समझ में आता है कि जनाबे फातिमा ने किस तरीके से अपने बाबा की बात की को अहमियत जाना और उसे यानी अंजाम दिया। जब मौलाए कायनात का बहुत ज्यादा इसरार हुआ कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे कुछ फरमाइश करें, तो देखिए किस अंदाज से उन्होंने फरमाइश की, मांगा भी तो क्या मांगा कि मैं बीमार हूँ, मेरा दिल चाह रहा है कि आप मेरे लिए एक अनार ले आए। तो तफसीली वाकया है कि फिर मौलाए कायनात गए उनके लिए अनार का इंतजाम करने के लिए। तो कहा जाता है कि इस तरीके से शहजादी ने हक जौजियत को अंजाम दिया। फिर तीसरा रुख जैसे आपने बयान किया बहैसियत माँ के, तो माँ देखें पूरी कायनात की तरबियत एक तरफ, शहजादी की तरबियत एक तरफ, शहजादी की तरबियत के लिए क्या खूब शायर ने कहा है, बस एक जुमला आपके सामने अर्ज करूंगी, चलो सलाम करे उसके आशताने को, चलो सलाम करे उसके आशताने को, हुसैन पाल कर जिसने दिया जमाने को, हुसैन पाल कर जिसने दिया जमाने को। वाकई शहजादी की क्या तरबियत है कि हसनैन जैसा कयामत तक हमें कोई बेटा नजर नहीं आता, और जनाबे जैनब उम्मे कुलसुम जैसा कोई हमारे सामने नजर नहीं आता, ऐसी तरबियत आपने की। और इन तमाम चीजों में अगर से जनाबे फातिमा को, शहजादी को हमारी जो इतनी फजीलत हासिल हुई है, अगर पूरी शहजादी की जिंदगी का मुतालिया करें तो समझ में ये आता है कि शहजादी ने अपनी जिंदगी का जो मकसद करार दिया था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि मुझे रजाए इलाही को हासिल करना है, जिसमें खुदा की खुशनुदी है, बस उस अमल को अंजाम देना है। तो हमारे लिए यही चीज है कि अगर हम शहजादी को अपने लिए उसवे हसना अपना आइडियल मान रहे हैं, तो हम कनीज हैं शहजादी की, तो हमारा क्या हक बनता है, हम ये देखें कि शहजादी ने किन चीजों पर अमल किया है, शहजादी के हिजाब का क्या आलम था कि जब एक नाबीना आ रहा है तब आप सबने सुना होगा कि शहजादी कहती है वो तो मुझे नहीं देख सकता लेकिन मैं उसे देख रही हूँ। तो शहजादी का जब इस अंदाज का पर्दा है, इस तरीके का हिजाब है, तो हमारा हिजाब किस अंदाज का होना चाहिए? शहजादी किस अंदाज से अपने बच्चों की तरबियत कर रही है, हमारा भी हक बनता है कि हम इस अंदाज से अपने बच्चों की तरबियत करें कि वो सिपाही इमामी जमाना में शामिल हो सके इंशाल्लाह।
हमारे साथ मौजूद हैं, इंडिया से ही आपका ताल्लुक है, फोहर वाहिबा जैद, फोहर वाहिबा तहजीब जैदी। आपका भी तारुफ कराती चलूं कि माशाल्लाह आप भी जामतुल जहरा लखनऊ से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, 5 साल आपने वहाँ दर्स किया, फिर आप भी आला तालीम के लिए जामतुल जहरा, जो नाम ही से बता रही है दुनिया की पहली खवातीन यूनिवर्सिटी, और जामतु जहरा बीबी जहरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम पे रखा गया उसका नाम, आपने वहां जाके दर्स इखलाक और कारशनासी में कस्बे फैज किया, वापस आके दर्स तदरीस से मुंसलिक हैं, जाकरी कर रही हैं मुख्तलिफ मदारस में, मुख्तलिफ इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में आप जाती रहती हैं और दर्स देती रहती हैं। अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम खोहर।
अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही हैं, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि बीबी का एक लकब जो हम बार बार सुन रहे हैं, अभी कुछ सालों से बहुत ज्यादा हमारे अंदर इस चीज को किया बयान किया जा रहा है बार बार, मुदाफे विलायत। ये बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा ने जितनी तकलीफें उठाई, वो जो जुमला था, जो अगर काली रातों पे दिन पे ढाई जाते तो वो रात में तब्दील हो जाते, तो वो सारे मसाइब की एक्चुअल रीजन क्या था? ये तो हम सब देखते हैं कि बीबी फातिमा कर रही है, लेकिन अगर जब हमसे कहा जाता है कि विलायत का दिफा कीजिए, विलायत का दिफा हम सब पे वाजिब है, तो इस वक्त बजाहिर इमाम जमाना जल्लल्लाहु ताला फरजहू पर्दे गायब, सारे मसाइल हैं हम देख रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं, हम देखते कि इमाम के ऊपर डायरेक्ट जुल्म किया जा रहा है, तो हम जाके खड़े हो जा रहे हैं इमाम को बचाएं। तो किस तरह हम कह सकते हैं कि हमारे बीवी का ये लाइफ का एस्पेक्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमको विलायत का दिफा करना है? खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और अली वलीउल्लाह खलीफतुहु बिला फज्ल तक पढ़ लें और चंद नारे लगा के और अपने आप को मौलाए कायनात का शिया और आशिक कहकर इमाम जमाना को दुआए इमाम जमाना पढ़ के, दुआए फरज पढ़ के पुकार लेना ही काफी है, या फिर हमें आज के दौर में कुछ और भी करना है उससे आगे? तो और आपसे गुजारिश है थोड़ी सी रोशनी इस पे डालें।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन वाइम्मतित ताहरीन। सबसे पहले तो मैं विलादत बा सआदत शहजादी कौनैन की मुनासिबत से अपने ज़माने के इमाम की खिदमत में, तमाम उलमाए इस्लाम राजे किराम की खिदमत में और आप सब की खिदमत में तबरीक और तहनियत अर्ज करती हूँ। आपने जो सवाल किया वो आज पेश आने वाला बहुत अहम सवाल है कि शहजादी कौनैन को अव्वलीन मुदाफ़ा विलायत कहा जाता है। शहजादी ने किस तरह से विलायत का दिफा किया और आज के ज़माने में शहजादी के नक्श कदम पे चलने वालों की जिम्मेदारियां इस विलायत के सिलसिले में क्या हैं? तो सबसे पहले तो मैं अर्ज करती चलूं कि यकीनन शहजादी कौनैन सिर्फ शरीक कार रिसालत नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में शरीक कार इमामत और विलायत भी नज़र आती हैं। शहजादी कायनात ने विलायत के दिफा के लिए जिस तरह से आपको पहली खातून के पस मंज़र में देखा जाता है कि जो विलायत के दिफा के लिए खड़ी हुई, इसलिए कि विलायत इस्लाम का अहम मौजू है और इस्लाम की बुनियाद ही विलायत पर है। लिहाजा दावत ज़ुल अशीरा में भी रसूल इस्लाम ने मौलाए कायनात की खिलाफत और जानशीनी की तरफ इशारा किया था और अपने दुनिया से जाने के कब्ल भी मैदान गदीर में मन कुंतु मौला के ज़रिए से मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया। अब शहजादी कौनैन की ज़िंदगी को देखा जाए तो जब बाद रसूल लोग मौलाए कायनात की विलायत से इनकार कर रहे थे और मनसब खिलाफत पे दूसरे को खलीफा बना के बिठा रहे थे, उस वक्त शहजादी शरीक कार इमामत और विलायत बनकर, मुदाफ़े विलायत बनकर खड़ी हुई। और पहले हमें ये देखना होगा कि शहजादी ने किस तरह से विलायत का दिफा किया, किस किन तरीकों को शहजादी ने अपनाया ताकि हम भी शहजादी की सीरत पे अमल कर सकें और उसी तरह से विलायत और विलायत फकी का दिफा कर सकें। पहली चीज, किसी भी दिफा के लिए, किसी भी मुहाफिजत के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान जबान के जरिए से लोगों को उसकी तरफ मुतवज्जे करे, अमर बिल मारूफ करे और नहीं अज़ मुनकर करे। लिहाजा सबसे पहले मखदूम आलम ने जबानी तौर पे खुतबा फिदक के जरिए से या महाजिर अंसार की खवातीन में खुतबा दे के, या कोई आपकी अयादत के लिए आया है तो उस वक्त अयादत में भी आपने मौलाए कायनात की फजीलत को बयान करके और लोगों को गदीर याद करा के विलायत का दिफा किया। लेकिन अगर बात जबानी नहीं बनती है तो फिर जबान के बाद इंसान को हरकत की मंजिल में आगे बढ़ना पड़ता है, अमल की मंजिल में आगे बढ़ना पड़ता है। जब हम शहजादी की जिंदगी को देखते हैं तो जबानी विलायत के दिफा के बाद आपने हरकत किया, अपने आज़ाओ जवारे से आपने विलायत का दिफा किया और इस तरह से दिफा किया कि तारीख कहती है कि एक दिन नहीं बल्कि 40 रातों को शहजादी मौलाए कायनात के साथ एक छोटी सी सवारी पे सवार होके मुहाजिरों अंसार के दरवाजे पे जाती थी और जाके कहती थी कि क्या तुमने गदीर को भुला दिया, क्या मेरे बाबा ने अली की विलायत के बारे में तुमसे वादा और अहद नहीं लिया था। लोग यहाँ तक कह रहे थे कि अगर अली पहले आए होते तो हम अली की विलायत को कबूल कर लेते, लेकिन अब हमने खलीफा के हाथों पे बैत कर लिया है। मौलाए कायनात ने उस वक्त यही इरशाद फरमाया कि तुम ये समझ रहे हो कि मैं रसूल के जनाजे को छोड़ के खिलाफत के लिए आ जाता, तो शहजादी ने विलायत की इस तरह से मुहाफिजत की और दिफा किया और तायीद की कि अली ने वही किया है जो अली को करना चाहिए था। फिर इसके बाद जब मुहाजिर अंसार पे इसका भी असर नहीं हुआ, आप एक एक के दरवाजे पे जाके अली की विलायत के बारे में अर्ज कर रही हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, तो एक और अहम चीज जो होती है वो होते हैं आंसू। गिरिए के जरिए से इंसान लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सकता है। लिहाजा अगर आप शहजादी कौनैन की जिंदगी में देखिए तो ये भी एक बेहतरीन असलहा था तो शहजादी ने विलायत के दिफा के लिए इस्तेमाल किया है। ये सही है कि रसूल जैसे बाप का फिराक शहजादी को गवारा नहीं था, लेकिन एक बेटी के लिए अगर बाप का गम मनाना ही सिर्फ मकसूद होता तो शहजादी घर में बैठकर भी गिरिया कर सकती थी। लेकिन अगर हम देखते हैं तो शहजादी कभी शोहदाए उहद के मजार पर गिरिया कर रही हैं, कभी जनाब हमजा की कब्र पे आके गिरिया कर रही हैं, कभी बैतुल हुज़्न में गिरिया कर रही हैं, कभी जन्नतुल बकी में गिरिया कर रही हैं। ये आखिर मुख्तलिफ मुकामात पे शहजादी गिरिया क्यों कर रही हैं? शायद शहजादी ये बताना चाह रही हैं कि देखो आंसुओं की शमशीर भी आहनी शमशीर से तेज चला करती है और तारीकियों के सीने को चाक कर दिया करती है। लिहाजा इसी गिरिए के दरमियान में जब महमूद बिन लुबैद सवाल करता है कि शहजादी ये गिरिया इतना ज्यादा क्यों है, आपके गिरिए से हमको तकलीफ होती है, क्या ये गिरिया रसूल के फिराक में है, तो शहजादी ने इरशाद फरमाया कि ये सिर्फ रसूल के फिराक में नहीं है बल्कि अली से जो अली के हक को छीन लिया गया, अली को जो विलायत से दस्तबरदार किया जा रहा है, मेरा रोना उस अली की मजलूमी पर है। कहने वाला कहता है कि शहजादी अली आगे बढ़कर अपना हक क्यों नहीं ले लेते, तो शहजादी ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया, इरशाद फरमाया कि मसलुल इमाम मसलुल काबा, इमाम की मिसाल काबे की तरह से होती है, काबा किसी के पास नहीं जाता, लोगों को काबे के तवाफ के लिए जाना पड़ता है। लिहाजा इमाम भी अपने हक खिलाफत के लिए किसी के दरवाजे पे नहीं जाएगा बल्कि लोगों को इमाम के दरवाजे पे आना ही पड़ेगा। और शायद ये बीबी की सदाकत ही थी कि फिर 25 सालों के अरसे के बाद लोगों को अली के दरवाजे पे आना पड़ा और शहजादी की दिफाए विलायत काम आई। फिर इसके बाद जो चीज इंसान को सबसे ज्यादा अजीज होती है वो औलाद होती है। शहजादी ने इसी विलायत के लिए जनाब मोहसिन को फिदिया करार दिया और फिर उसके बाद जब अपनी जान की बारी आती है तो शहजादी ने विलायत के दिफा के लिए अपनी जान को कुर्बान करने से भी दरियाग नहीं किया बल्कि शहजादी ने विलायत पे अपनी जान को भी निछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। तो गरज के शहजादी की पूरी जिंदगी से हमें यह दर्स मिलता है कि विलायत का दिफा इसी तरह से होना चाहिए और इंसान के अंदर विलायत मदारी इसी तरह से होना चाहिए कि अपने इमाम की, अपने वली की मुहाफिजत भी करे और अपने वली के सामने अपना सर तस्लीम खम भी कर दे। आज के जमाने में भी ضرورت ہے کہ اسی طرح سے ولایت کی حفاظت کی جائے۔ شاید ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں، نوجوانوں کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ آج ہمارے امام ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم کس طرح سے امام کی حفاظت کر سکتے ہیں، ہم کس طرح سے ولایت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اگر امام ہمارے سامنے نہیں ہیں لیکن آج نائب امام کی شکل میں، مراجع کی شکل میں امام کے نمائندے ہمارے سامنے موجود ہیں اور آج بھی ان پر اسی طرح سے انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جس طرح سے کل ولایت کو داغدار کیا جا رہا تھا، امامت کو داغدار کیا جا رہا تھا، ولایت فقی پہ نازیبہ کلمات ہیں، نازیبہ الزامات ہیں جو لگائے جا رہے ہیں، جبکہ یہ اسلام کی، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، کہ بنیاد ہے، اور دشمن جانتا ہے کہ اس ولایت میں بہت طاقت ہے۔ لہٰذا خود امریکی مفکر فرانسیسی فوکویاما کہتا ہے کہ شیعہ کون ہے، بہت اچھی مثال انہوں نے پیش کی، کہتے ہیں کہ شیعہ ایک ایسا پرندہ ہے جس کے دو مضبوط پر ہیں، ایک سرخ پر ہے اور دوسرا سبز پر ہے۔ سرخ پر امام حسین علیہ السلام ہیں اور سبز پر امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہیں۔ سرخ پر شہادت کی آرزو ہے جس کی جڑیں کربلا میں ہیں، یہ آرزو انہیں جھکنے نہیں دیتی، اور سبز پر مہدویت پہ ایمان ہے، شیعہ عدل و انصاف قائم ہونے کے منتظر اور امیدوار ہیں، اور جو امیدوار ہو کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ اس پرندے نے انہیں ایک مضبوط زرہ پہن رکھی ہے جس کا نام ولایت فقی ہے، یہ زرہ دونوں پروں کی محافظ ہے۔ شیعہ مذہب ان پروں اور زرہ کے ذریعے اتنی بلندی پہ پرواز کر رہا ہے کہ ہمارے سیاسی، اقتصادی، معاشی، ثقافتی اور اخلاقی زہر آلود تیر اس تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں۔ اگر ہمیں شیعوں کو شکست دینا ہے تو ان سے جذبہ شہادت کو اور ولایت فقیہ کو سلب کرنا ہوگا۔ اور آج آپ دیکھیے کہ دشمن اسی کام پر لگا ہوا ہے کہ وہ ہمیں ولایت سے دور کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں امامت سے دور کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ ان تمام محترم افراد کی توہین کر رہا ہے۔ لیکن یہ شہزادی کونین کی سیرت نے ہمیں بتایا کہ جس طرح سے کل ہم نے ولایت کا دفاع کیا تھا، اسی طرح سے آج تمہیں بھی ولایت کا دفاع کرنا ہے، جس طرح سے کل ہم نے امامت کا دفاع کیا تھا، آج ہمارے نقش قدم پہ چلنے والوں کو اسی طرح سے امامت کا دفاع کرنا ہے۔ اگرچہ آج ولایت کا وہ موضوع نہیں ہے کہ زمانے کے امام ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن ولایت فقی ہمارے سامنے ہے، نائب امام ہمارے سامنے ہے، اور دنیا ان کے چہرے کو مست کرنا چاہ رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ انہیں درمیان سے ختم کر دیا جائے، انہیں درمیان سے ہٹا دیا جائے، لیکن اب ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم شہزادی کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے تن من دھن سے نائب امام کی حفاظت فرمائیں، ولایت حد فقیہ کا مدافعت کریں۔
ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں اور معصومہ شیرازی موجود ہیں جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ شاعرہ ہیں، علامہ اقبال یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملک میں اور ملک سے باہر درس و تدریس اور تبلیغ دین کے فرائض سر انجام دیتی رہتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے بچے بھی خوب میں زیر تعلیم ہیں، مزید تعارف کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں السلام علیکم خواہر، سب سے پہلے اپنے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے بہت ہی قیمتی وقت میں سے ہمیں موقع دیا کہ اس وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمارے لیے بھی آپ نے معین کیا۔ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ان کی سیرت و کردار اور کس طرح وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کچھ اس پر گفتگو، کچھ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ ویسے تو ہمارے پروگرام میں بہرحال ایک شاعر موجود ہو اور اس سے اس کے کلام کی خواہش درخواست نہ کی جائے ناممکن ہے، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے ان سے ہمیں مستفید فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو میں اس ملکوتی اور نورانی اس محفل مبارک میں آپ کا مجھے شریک کرنے پر آپ کی انتہائی مشکور ہوں، اور جناب سیدہ کی مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے کشکول عشق میں جو خیرات گویائی دی ہے اس کی بنا پر میں اس قابل ہوں کہ آج میں اپنی بی بی کے حوالے سے کچھ گفتگو کر سکتی ہوں۔
माशाल्लाह
इब्तिदा रब्बे करीम के बाबरकत इस्म से, और दुरूद व सलाम हो उन ज़वाते मुकद्दसा पर जो
बिस्मिल्लाह
हकीकत कुबरा की रोशन निशानियां, सिराते मुस्तकीम के सीधे रास्ते, निजात के लौ देते रोशन चराग, और हिदायत के चलते रवां सफीने हैं जिनकी वजह से दुरूद में दम और हरारत है। और हजारों दुरूद व सलाम उम्मो अबीहा, उम्मुल फजाइल, उम्मुल किताब, उम्मुल हुजज, दलाइल की माँ, कौकबे दुर्रिय मुस्तफा, बेहजते कल्ब नबी, साहिबतुल मुसहफ, शफीअतुल उम्मा, लैलतुल कद्र अहले बैत, कौसर कुरान जनाबे सैयदा पर हजारों दुरूद व सलाम। और हदिया सपास व अकीदत के बाद हमारे लिए कुरानी कौसर कुरान के हवाले से खुदा ने जो एक अपने पसंदीदा तरीन कुंबे को मुख्तस किया हमारे लिए बतौर उस्वा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत, कि ये हैं घर वाले और घरों को ऐसे बसाओ जैसे खुदा की पसंद के घर बसाने वालों ने खुदा का घर बसाया। तो जनाबे सैयदा इस घर का वो मरकजी नुक्ता है जिनके तीन चेहरे सामने आते हैं। मैं खवातीन से मुखातिब हूँ, मेरी बीबी का तीन चेहरे हैं जो बता रहे हैं उस खान अल्लाह के पसंदीदा तरीन घर के उसवे को बयान फरमा रहे हैं। बीबी का सबसे पहले उमूरे खाना में अपनी मोहब्बतें तकसीम करने का सिलसिला, और उसके बाद बीबी की बेपनाह खूबसूरत मलकूती आशिकाना इबादत इलाही, और उसके बाद तीसरा चेहरा बीबी का है कि जो आप पर रज में हक व बातिल में महाज़े फिक्र पर अपने फिक्र की जो खैरात आलमीन में बांट रही हैं। तो ये बतलाया गया कि अल्लाह के इलाही घराने की सबसे खूबसूरत मिसाल ये घर है, और इसमें जनाबे सैयदा ने बरपा करके एक बेहतरीन घर को, जिसमें आपकी और मेरी पसंद नहीं बल्कि इस घर का मकसद हयात अल्लाह को क्या पसंद है कि बुनियाद पर रखा गया। खुदा हम सबको ऐसे घर बसाने की, कौसर की जन्नत बसाने की तौफीक अता फरमाए। और आपने जिस तरह फरमाया कि कलाम तो चूंकि लिखा है बीबी के लिए ताजा कलाम, तो मैं चंद अशआर जनाबे सैयदा के हुजूर और आपकी फातिमा शनास समातों की नजर करना चाहूंगी कि रगों में दौड़ता इश्क अली दुआए बतूल, मेरा वजूद मेरी जिंदगी बराए बतूल, और उसी कदर रजी अल्लाह की सनद देगा, खुदा को अर्श पे दरकार है रजाए बतूल, और सिखाए कलमाए ईमान जो यहूदी को, हिजाबे रब का वो असरार है रिदाए बतूल,
सुभान अल्लाह
और
सुभान
बता रही है जमानों को बेनिशान लहद, गिरा है दुश्मन ईमान पर विलाए बतूल, और गिरे बुतान बलागत जवारे काबा में, लिखी गई दरे काबा पे जब सनाए बतूल, और तमाम अहले हवस जिससे खाइफ हो लर्जा, तमाम अहले हवस जिससे खाइफ हो लर्जा, सितमगरों पे वो ज़र्बे खुदा सदाए बतूल, रगों में दौड़ता इश्क़े अली दुआए बतूल। हजारों सलाम कौकबे दुर्रिय मुस्तफा, शबे कद्रे अहले बैत, कौसर कुरान जनाबे फातिमा जहरा पर।
सुभान अल्लाह, बेहतरीन कलाम दिल से निकले और दिल में उतर जाए। बीबी की
बहुत
मंजिलत
शुक्रिया।
और मकाम का क्या कहना। हम अपने प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ चलते हैं। तो खौर आपसे गुजारिश है कि एक तरीका है कि जब भी किसी चीज़ का अख्तिताम किया जाता है तो दुआ पे किया जाता है, तो आपसे गुजारिश है कि प्रोग्राम के अख्तिताम दुआ के तौर पे कीजिए, दुआई या कलमात से खुदा के हुजूर बीबी के सदके में।
इस वक्त सबसे बड़ी जो दुआ है, जो इज्तिमाई दुआ है और तमाम मुसलमानों के दिलों से जो गिरियाओ आह की सदा है, वो फलस्तीन में बहता हुआ बेगुना लहू है। और हम दुआ करते हैं खुदा के उस खुदाई वादे के जेर साया अपने करीम मेहरबान रब से अर्ज गुजार है कि वो अस्हाबे कहफ को मुखातिब करते हुए कुरान में कहते हैं, वरबतना अला कुलूबहिम इज कामू, कि हमने दिलों को मजबूत कर दिया जब तुमने कयाम का इरादा कर लिया, और इस वक्त यूं समझिए कि जा अल हक वजह कल बातिल इन अल बातिला काना जहूका, ये भी खुदाई वादा है कि बेशक हक आएगा और बातिल मिट जाएगा और बेशक बातिल मिटने के लिए ही है। और हम इन फतहना लक फतहन मुबीना के सदके में, खुदा के इस खुदाई अबदी आफाकी और दायमी वादे के साए में जनाब सैयदा के हुजूर और बीबी के तवस्सुत और बीबी के वसीले और बीबी के तवस्सुल से अपने खुदा से मुखातिब हैं, क्योंकि फातिमा के दर से कभी कोई साइल खाली नहीं जाता। और अय्याम फातिमिया के इन हसीन और मलकूती और नूरानी लम्हों में मैं अपनी बीबी के हुजूर अर्ज गुजार हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक फातिमा व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मस्तौदा फीहा। बीबी के उस अजीम राज को जो राजे गैबते हिजाबे किबरिया है, ऐ मेरे खुदा अपनी इस अजीम तरीन कनीज के सदक़े में जिसके खशियत और जिसकी मोहब्बत और जिसके इश्क को तो देख कर तू खुदा फरमाता है कि मैंने फातिमा के मुहब्बों को भी जहन्नुम की आग से आजाद कर दिया है। मेरे खुदा इस वक्त फलस्तीन में बहते हुए बेगुनाह लहू से बशारत की ऐसी तहरीर लिख दे वक्त के माथे पर कि ये मुट्ठी भर मुसलमान तौहीद परस्त गिरोह जो इस वक्त तागूत से बरसरे पैकार है, 313 उलेल अज्म खुदा परस्तों के सदक़े में जिन्होंने बद्र में शौमुल फरकान बरपा करके जमाने को बतला दिया कि किल्लत कसरत पर उस वक्त फतेह याब हो सकती है जब वो तौहीद परस्त। ऐ मेरे खुदा तुझे वास्ता है अस्हाबे कहफ का, तुझे वास्ता है उन 313 का जिन्होंने रसूल के साये में एक बेहतरीन फतह को अपने सामने महसूस किया। और ए यामन तुहल्लु बही उकदुल मकारहे व यामन युफसहु बही हद्दुश शदाइद, चौथे मौला कहते हैं ए मेरे मुश्किलों की गांठें खोल देने वाले खुदा। और इसी तरह इमाम जमाना के हुजूर के इलाही अज़म अल बला व बरह अल खफा व अनकशफ अल गिता व अनक़ता अर रजा व ज़ाक़त अल अर्ज़ व मुनअत अस समा, मुश्किलें इतनी बढ़ चुकी हैं और उम्मीदें टूटती चली जा रही है। मेरे खुदा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, इन बेगुनाह बहते हुए लहू पर नजरे करम फरमा। और तू फरमाता है कि कभी लहू रायगा नहीं जाता, इस पाकीजा बहते हुए मजलूम लहू के इस सुर्खी से तू इनकी अबदी फतह, मुसलमानों की तागूत पर अबदी फतह की तहरीर लिख। ऐ मेरे खुदा तुझे वास्ता है जनाबे फातिमा जहरा का, हबीबतुल मुस्तफा का वास्ता है। ऐ मेरे खुदा फलस्तीनियों को तागूत के नरगे से निकाल कर फतेह मुबीन अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ले अला محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم عجل لوليك الفرج।
इसी दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम फ़िलिस्तीन की मदद करे उन मुसलमानों को, गाज़ा में रहने वाले मुसलमानों को उस जुल्म से आज़ाद कराए जो आजकल बे इंतहा और किया जा रहा है। हम सबको इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहू के ज़हूर की राहों को हमवार करने में हम सबका साथ दे, और इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। खुदा हाफिज़।